ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामी झा ने भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी कर लौटे स्वदेश। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल भारत दौरे पर पहुंचे नई दिल्ली। अवकाश समाप्त होने के बाद भी संपर्क विहीन कर्मचारियों को 3 दिन के भीतर हाजिर होने का सामान्य प्रशासन मंत्रालय का आह्वान, अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी। और भारतीय राज्य मणिपुर के कांगपोकपी जिले में हिंसा की एक घटना में 3 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामी झा ने 5 दिवसीय भारत यात्रा पूरी कर आज स्वदेश लौट आए हैं। स्वदेश लौटने के बाद त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर आयोजित पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण पर हुई यात्रा के दौरान हुई वार्ताएं पारदर्शी और स्पष्ट रहीं। उन्होंने कहा कि संपर्क सुविधा से लेकर धार्मिक पर्यटन तक नेपाल की प्राथमिकताओं और द्विपक्षीय संबंधों से अपेक्षित लाभों पर स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की गई। सभापति लामी झा ने सीमा संबंधी समस्याओं का समाधान कूटनीतिक माध्यम से करने की बात कही और कूटनीति के विषय को जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ समझने का आग्रह किया। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के मैत्रीपूर्ण निमंत्रण पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत में नेपाल के कार्यवाहक राजदूत डॉ सुरेंद्र थापा और भारत के विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुनू महावर ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यात्रा के दौरान मंत्री खनाल अपने भारतीय समकक्ष डॉ जयशंकर के साथ औपचारिक वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, संपर्क सुविधा, ऊर्जा तथा जनस्तरीय संबंधों पर चर्चा होगी। मंत्री खनाल 24 जेठ को काठमांडू लौटेंगे। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने संपर्क विहीन कर्मचारियों को अगले 3 दिन के भीतर कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने सूचना जारी कर अध्ययन अवकाश और असाधारण अवकाश से संबंधित अभिलेख राष्ट्रीय किताबखाना निजामती में अद्यावधिक न करने वाले कर्मचारियों को 3 दिन के भीतर रिकॉर्ड अपडेट करने को कहा है। साथ ही विभिन्न सरकारी निकायों को भी कर्मचारियों के अवकाश और उपस्थिति संबंधी विवरण सत्यापित कर अभिलेख अद्यावधिक करने का अनुरोध किया गया है। सरकार ने बंदरों और अन्य वन्य जीवों से कृषि फसलों को हो रहे नुकसान को कम करने के उपाय खोजने के लिए आम जनता और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे हैं। कृषि वन तथा वातावरण मंत्रालय के तहत गठित मानव वन्य जीव द्वंद प्रबंधन तकनीकी कार्यदल ने 15 दिनों के भीतर राय और सुझाव उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। कार्यदल का कहना है कि किसानों, स्थानीय निकायों और विशेषज्ञों के अनुभव के आधार पर व्यावहारिक तथा प्रभावी समाधान तैयार किए जाएंगे। इसके लिए नीति सुधार, राहत, क्षतिपूर्ति और वन्य जीव प्रबंधन से जुड़े सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक व्यक्ति मंत्रालय की वेबसाइट, ईमेल या QR कोड के माध्यम से अपने सुझाव भेज सकते हैं। कृषि वन तथा वातावरण मंत्री गीता चौधरी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच आर्थिक समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण को साथ साथ आगे बढ़ाना जरूरी है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि नेपाल में जलवायु परिवर्तन का असर हिमालय से तराई तक दिखाई देने लगा है। उन्होंने बताया कि सरकार हरित अर्थव्यवस्था, वन संरक्षण, कृषि, ऊर्जा और जैव विविधता आधारित विकास को प्राथमिकता दे रही है। मंत्री चौधरी ने कहा कि सामुदायिक वन प्रबंधन और जड़ी बूटी आधारित उद्योगों के विकास से संरक्षण के साथ आर्थिक समृद्धि भी हासिल की जा सकती है। उन्होंने वायु प्रदूषण नियंत्रण को भी महत्वपूर्ण बताते हुए वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव ने कहा है कि आयुर्वेद, योग और ध्यान जैसी पारंपरिक उपचार पद्धतियों को आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़कर लोगों को सुलभ और दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सकता है। कीर्तिपुर में आयोजित एक संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम में और ध्यान मानसिक शांति और तनाव प्रबंधन में सहायक हैं। उन्होंने आयुर्वेद को स्थानीय जड़ी बूटियों और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित महत्वपूर्ण उपचार पद्धति बताया। उपराष्ट्रपति यादव ने आधुनिक चिकित्सा के साथ आयुर्वेद, योग और ध्यान को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि विद्यालयों, समुदायों और कार्यस्थलों में इनके उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में भी इन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी, नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि, नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी, नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी, नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ विक्रम तिमिल सिन्हा ने कहा है कि सरकार डिजिटल रूपांतरण, साइबर सुरक्षा, मीडिया सुधार और संस्थागत क्षमता विकास के क्षेत्रों में विभिन्न संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज मंत्रालय में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में डिजिटल शासन, सेवा वितरण में सुधार, साइबर अपराध नियंत्रण, पत्रकार सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे विषयों पर चर्चा हुई। नेपाल के लिए संयुक्त राष्ट्र की आवासीय समन्वयक लीला पीटर्स याहिया ने साइबर अपराध नियंत्रण, पारदर्शी शासन और तकनीक के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया। सूचना तथा संचार मंत्रालय ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल पीएसबी में कथित वित्तीय अनियमितता, प्रक्रियागत कमजोरी और वित्तीय अनुशासन उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए समिति गठित की है। इंजीनियर डॉक्टर आभाष मास्के के संयोजकत्व में गठित समिति में उमेश रूपा खेती, टीकाराम कार्की और नवीन कुमार मिश्र सदस्य हैं। मंत्रालय के अनुसार सैटेलाइट बैंडविड्थ सेवा, चैनलों के विस्तार, एसडी से एचडी रूपांतरण और उपकरण खरीद से जुड़े निर्णयों पर उठे प्रश्नों का अध्ययन किया जाएगा। समिति को 21 दिनों के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कार्यादेश दिया गया है। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ ने कहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन नेपाल के हरित भविष्य के निर्माण का महत्वपूर्ण अवसर और संसाधन है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जल विद्युत और अन्य नवीनीकरणीय ऊर्जा की प्रचुर संभावना के कारण नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त देश है। उन्होंने बताया कि सरकार ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2080 लागू कर चुकी है और व्यावसायिक उत्पादन के लिए पायलट परियोजनाओं हेतु बजट की व्यवस्था भी की गई है। मंत्री श्रेष्ठ ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता से संबंधित अलग कानून बनाने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। नेपाल में निवेश के लिए श्रीलंका के व्यवसायियों ने रुचि दिखाई है। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ और सिलोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच हुई बैठक में दोनों देशों के बीच निवेश प्रवर्धन के विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान श्रीलंकाई व्यवसायियों ने नेपाल में निवेश के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की। महासंघ के वस्तुगत उपाध्यक्ष नरेश लाल श्रेष्ठ ने कहा कि नेपाल में 40,000 मेगावाट से अधिक जलविद्युत उत्पादन की संभावना है और इस क्षेत्र में निवेश के व्यापक अवसर मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि नेपाल सरकार ने जलविद्युत क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए अनुकूल नीतियां अपनाई हैं और इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है। श्रेष्ठ ने कहा कि नेपाल में लगभग 2/3 बहुमत की सरकार है और वर्तमान सरकार विदेशी निवेश को आकर्षित करने और निवेशकों को आवश्यक सहजीकरण प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल में जड़ी बूटी उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। श्रीलंकाई उद्योगपतियों से इस क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने का आग्रह करते हुए उन्होंने बताया कि नेपाल वर्तमान में जड़ी बूटी उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल कम मूल्य पर निर्यात कर रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय राज्य मणिपुर के कांगपोकपी जिले में हिंसा की एक घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। कांगपोकपी थाने के प्रभारी मिन किपगेन के हवाले से बीबीसी ने बताया, यह हमला आज तड़के करीब 4 बजे किया गया। हथियारों से लैस संदिग्ध उग्रवादियों ने लोईबोल खुलेन गांव में अंधाधुंध गोलियां चलाई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने आगे कहा, हमलावरों ने कुछ घरों को भी आग लगा दी थी। फिलहाल पुलिस की टीम आसपास के इलाकों में हमलावरों की तलाश के अभियान चला रही है। पुलिस ने इस हमले में मारे गए लोगों की पहचान लिटखोंगम हाओकिप, उनकी पत्नी टिनमेरी हाओकिप और जांग मिनलाल हाओकिप के तौर पर की है। ये सभी लोईबोल खुलेन गांव के रहने वाले थे। इस बीच कुकी जो जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष संस्था कुकी इनपी मणिपुर ने इस हमले की निंदा करते हुए नगा चरमपंथी संगठन एनएससीएन आईएम और उसके कथित प्रॉक्सी समूह जेडीयूएफके को जिम्मेदार ठहराया है। मणिपुर में बीते 3 साल से जारी जातीय तनाव और हिंसा के माहौल में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। पहले यह हिंसा कुकी जनजाति और मैतेई समुदाय के बीच शुरू हुई और इस साल फरवरी से कुकी और मणिपुर में बसे नगा जनजाति के बीच नई हिंसा शुरू हो गई है। इस ताजा हिंसा को लेकर कुकी जनजाति के जितने भी नागरिक संगठनों ने बयान जारी किए हैं उसमें नगा चरमपंथी गुटों को जिम्मेदार ठहराया गया है। हालांकि अब तक नगा चरमपंथी समूहों की तरफ से घटना से संबंधित किसी भी आरोप का जवाब नहीं आया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामी झा ने भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी कर लौटे स्वदेश। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल भारत दौरे पर पहुंचे नई दिल्ली। अवकाश समाप्त होने के बाद भी संपर्क विहीन कर्मचारियों को 3 दिन के भीतर हाजिर होने का सामान्य प्रशासन मंत्रालय का आह्वान, अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी। और भारतीय राज्य मणिपुर के कांगपोकपी जिले में हिंसा की एक घटना में 3 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।